समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सभी श्रोताओं को छत्रपति शिवाजी राजे भोसले की जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु।
नमस्कार मनोज एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड डियर लिसनर्स, इन आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे वी आर गोइंग टू शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 19th ऑफ फेब्रुवरी। सो बिफोर वी बिगिन विद द हेडलाइंस, अ लिटिल मोर ऑन 19th ऑफ फेब्रुवरी एज वी आर सेलिब्रेटिंग शिवाजी महाराज जयंती। मनोज, विच इज एन इलस्ट्रियस कमेमोरेशन ऑफ द बर्थ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, विच एपिटमाइजेस वैलर, स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन एंड अनवेवरिंग पेट्रियोटिज्म। This momentous occasion, observed annually on 19th of February, honors his unparalleled contributions to the Maratha Empire. A visionary leader, Shivaji championed Swarajya, fortification and naval prowess while upholding justice and tolerance. His governance, steeped in administrative brilliance, inspires generations. On this day, let us remember the indomitable spirit of this legendary warrior king. And with that, let's begin with the headlines.
जी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में भाजपा के सभी नव निर्वाचित विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कल दिल्ली के रामलीला मैदान में हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीती हैं।
President Draupadi Murmu has said that India's relations with Qatar are steeped in history spanning centuries and that Qatar has been an integral part of West Asia's commercial and cultural linkages with India. Welcoming the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, at Rashtrapati Bhavan last evening, the President emphasized that the multifaceted engagement and cooperation between the two countries are marked by a deep sense of comfort and time-tested goodwill. She highlighted that the two countries are reliable partners in trade, investment, food security, health, culture and energy. The President also suggested that India and Qatar should leverage their respective strengths to broaden cooperation in innovation, technology and startups. She emphasized the importance of both nations working together for peace, progress and prosperity, not only for the people of India and Qatar, but for all people of the world. Both leaders agreed that elevating the India-Qatar relationship to the level of a strategic partnership will create a roadmap for even closer engagement. President Draupadi Murmu also hosted a banquet in honor of the visiting leader.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। श्री राजीव कुमार का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल कल समाप्त होने के बाद श्री ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। वे 1988 बैच के केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर भी काम किया था। इसके अतिरिक्त 1989 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है।
Union Home Minister Amit Shah has asked the administration in Jammu and Kashmir to ensure the full implementation of the three new criminal laws in the Union Territory by April this year. He said this while chairing a review meeting on the implementation of the three new criminal laws in Jammu and Kashmir in the presence of Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Umar Abdullah in New Delhi yesterday. Mr. Shah said that optimum use of technology should be made to ensure speedy justice under the three new criminal laws. The Home Minister said that with the decline in terror activities and improvement in the security scenario in Jammu and Kashmir, the police should now prioritize safeguarding the rights of citizens. He added that there is an urgent need to use the provision of trial in absentia in the Union Territory. He said that every police station in Jammu and Kashmir should make the maximum use of the National Automated Fingerprint Identification System. He said that 100% training of investigating officers regarding the provisions of the new laws should be ensured at the earliest. Speaking to the media after the meeting, Chief Minister Umar Abdullah said, efforts will be made to raise awareness among the people of Jammu and Kashmir about these new laws.
ये नए कानून है और कानून का लागू करना एक तरफ कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए कानून की जानकारी लोगों को ज्यादा हो उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी चाहे यूनिवर्सिटीज के लेवल पे सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर बने अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल के उद्घाटन की सराहना की है सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस टर्मिनल को क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया केंद्रीय पोत परिवहन जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो नामग्याल दोरजी के साथ इस टर्मिनल का उद्घाटन किया था मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से जुड़ा ये अत्याधुनिक टर्मिनल भूटान और बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में काम करेगा ये टर्मिनल भूटान में गेलफू से 91 किलोमीटर बांग्लादेश सीमा से 108 किलोमीटर और गुवाहाटी से 147 किलोमीटर दूर स्थित है इससे असम और पूर्वोत्तर में लॉजिस्टिक्स और मालवाहक जहाजों का आवागमन बढ़ने की उम्मीद है
Ukraine President Volodymyr Zelensky has renewed a demand that Kyiv be included in any talks to end its war with Russia after the United States and Russia agreed to create a team to negotiate a halt to the fighting. Ukraine was not represented at the talks between the US and Russian officials in Saudi Arabia's capital Riyadh yesterday. He told this to reporters during a visit to Turkey where he held talks with President Recep Tayyip Erdogan. He said that Ukraine wants no one to decide anything behind its back. He said no decision can be made without Ukraine on how to end the war in Ukraine. Zelensky added that he was due to travel to Saudi Arabia today but has now postponed his trip to Riyadh until March 10 as he did not want any coincidences. The meeting in Riyadh marked the first time that US and Russian officials have met to discuss ways to halt the fighting that escalated with Russia's full-scale invasion of Ukraine in February 2022. US Secretary of State Marco Rubio and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov agreed to appoint respective high-level teams to begin working on a path to end the conflict in Ukraine as soon as possible, the US State Department said.
अब खबरें महाकुंभ की उत्तर प्रदेश सरकार और महाकुंभ मेला प्राधिकरण ने ऐसी अफवाहों को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले को 26 फरवरी से आगे बढ़ा दिया गया है प्रयागराज के जिला मैजिस्ट्रेट रविंद्र मौदड ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह पूरी तरह निराधार है ब्यौरा हमारे संवाददाता से
महाकुंभ का समापन निर्धारित तिथि 26 फरवरी को होगा। शेष बचे दिनों में पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने तथा श्रद्धालुओं के सुचारू आवागमन के लिए व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी रविन्द्र मादंड ने बताया कि महाकुंभ मेले का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त के अनुसार जारी किया जाता है और ये पहले से तय होता है। श्री मादंड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ओर से मेले की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक भीड़ के इकट्ठा होने से बचने के लिए प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये स्टेशन मेले से सटा हुआ है। इस बीच प्रयागराज के अन्य सभी स्टेशनों पर रेलों की आवाजाही जारी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व सूचना के किसी भी रेलवे स्टेशन को बंद नहीं किया गया है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
And Manoj, before we end the news segment, let's talk about a little bit of sports. The 9th edition of the ICC Champions Trophy will begin this afternoon with defending champions Pakistan taking on New Zealand in their opening match in Karachi. The match is scheduled to begin at 2:30 PM Indian time. We have a report.
As the Champions Trophy begins today, Rohit Sharma-led Indian team will kick off their campaign against Bangladesh in Dubai tomorrow. The tournament featuring 8 top-ranked ODI teams will be held across Pakistan and UAE, and the final will be played on 9th of next month. In Women's Premier League cricket, Mumbai Indians defeated Gujarat Giants by 5 wickets at the Kotambi Stadium in Vadodara last night. Today, UP Warriors will take on Delhi Capitals at the same venue this evening. Next, we have from FIH Pro Hockey League, where Indian men's team suffered a 4-1 defeat to reigning world champions Germany at Kalinga Hockey Stadium in Bhubaneswar last night. Both the teams will meet again this evening. On the other hand, Indian women's team also lost to Spain 3-4 in a close thriller. They will again face Spain this evening with an aim to take revenge. At last but not the least, 34th edition of the ITTF ATTU Asian Cup Table Tennis Tournament 2025 will begin in Shenzhen, China this morning. India has sent a 6-member contingent led by world number 42 Sharad Kamal. Chirag Jha, Akash News, Delhi.
अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का।
जी, एंड आई विल बिगिन विद चेन्नई फर्स्ट। मनोज, द मद्रास हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ डिमोलिशन ऑफ 7 फ्लोर्स ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कमर्शियल बिल्डिंग इन पौंडी बाजार इन चेन्नई। अ डिविजन बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, जस्टिस एम सुब्रमण्यम एंड जस्टिस के राजशेखर, ऑब्जर्व्ड दैट रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कुड नॉट बी क्लेम्ड एज एन एब्सोल्यूट राइट। द कोर्ट सेड दैट द कंसेशन इज ग्रांटेड एज अ वन टाइम measure through special schemes. The government is not expected to regularize the unauthorized building in a routine manner by invoking the provisions of exemption under the Town and Country Planning Act. The court then directed the Chennai Metropolitan Development Authority to take necessary action. Aur ab aapke paas chalte hain Delhi ki khabron ka?
Ji ji. आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में मेट्रो वियाडक्ट पर देश के पहले ऊर्ध्वाकार बाईफेसियल सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। ग्रीन मेट्रो सिस्टम पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मनोहर लाल ने ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर भी जोर दिया। उन्होंने एयर कंडीशनर के तापमान को नियंत्रित करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्लैप आधारित प्रणाली के उपयोग का सुझाव दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक मेगावाट की छत सौर संयंत्र भी शुरू किया। उन्होंने एक स्थायी शहरी परिवहन का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सराहना की। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूरे देश में मेट्रो हितधारकों को एक साथ लाना था, विश्व स्तरीय हरित शहरी रेल प्रणालियों को विकसित करने और भारत को कम कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनाना है।
Moving on to Bengaluru, Karnataka Energy Minister K.J. George has assured farmers that his department will ensure 7 hours of three-phase power daily for agricultural pump sets and 24 hours of power for household and industrial use. Speaking at the review meeting in Davangir yesterday, the Energy Minister said that there is no power shortage in the state this year. On some areas experiencing power cuts, the minister said that those are due to technical issues related to maintenance works. He informed that the daily power demand in the state stands at 18,500 megawatts and with the arrival of summer, the demand may go up by 10% above the average. He further added that the power supply is sourced from Punjab and Uttar Pradesh through an exchange arrangement, under which the state will return the power to those states when the demand decreases in the state by June.
अब महाराष्ट्र मुंबई की खबर। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के आयुक्त और प्रशासक भूषण गगरानी ने बीएमसी और रेलवे प्रशासन के अधिकारियों को तैयारियों का आकलन करने और ये सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी और मध्य रेलवे स्टेशनों पर संयुक्त स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया, ताकि मॉनसून के दौरान मुंबई की उपनगरीय रेलवे सेवाएं निर्बाध रहें। मॉनसून पूर्व तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री गगरानी ने जल भराव को रोकने के लिए बीएमसी के अधिकार क्षेत्र के भीतर रेलवे पटरियों से सटे नालों से पूरी तरह से गाद निकालने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने उपनगरीय रेलवे प्रणाली सहित एजेंसियों के बीच समन्वय के महत्व का उल्लेख किया, ताकि तेज बारिश के दौरान रेल सेवाएं अप्रभावित रहें। श्री गगरानी ने समय पर तैयारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, क्योंकि उपनगरीय रेलवे प्रणाली में व्यवधान मुंबई में दैनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। बीएमसी अधिकारियों ने निर्धारित समय पर गाद निकालने का काम पूरा करने, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जनशक्ति और मशीनरी तैनात करने और जल भराव वाले स्थानों पर निवारक उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
And the last news that I have is from Hyderabad Metro, Manoj. The Telangana state government has entered into a partnership to boost the startup ecosystem by signing a memorandum of understanding with Brazil's Goiás Hub. The agreement was officially signed by T-Hub Foundation CEO Sujit and Science, Technology and Innovation Secretary of Goiás State, José Frederico Lira Neto, in the presence of Chief Minister A. Revant Reddy and IT Minister D. Sridhar Babu in Hyderabad yesterday. An official release stated that collaboration aimed at fostering a dynamic exchange of startups between Telangana and Brazil, offering promising opportunities for both the regions. Under the MOU, Telangana-based startups will gain access to the Brazilian market, while Brazilian startups will have the chance to establish their operations in Telangana, strengthening international ties. The partnership focuses on key sectors including artificial intelligence, information technology, agri-tech, healthcare, biotech and mining. और बाकी सारी न्यूज के लिए चलते हैं आप ही के पास मनोज।
जी हाँ, कोलकाता समाचार।
जी,
रामकृष्ण मठ और मिशन 19 फरवरी यानी आज 1897 के शिकागो धर्म सम्मेलन से कोलकाता में स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक वापसी का उत्सव मनाएगा। आज बजबज रेलवे स्टेशन पर उनकी वापसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूर्वी रेलवे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के साथ बजबज स्टेशन से सियालदह स्टेशन के लिए एक विशेष ट्रेन चलाएगा। सियालदह रेलवे स्टेशन से स्वामी जी की प्रतिमा के साथ आलम बाजार मठ की ओर एक रंगारंग शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस वर्ष रामकृष्ण मठ और मिशन शिकागो धर्म सम्मेलन से स्वामी विवेकानंद की कोलकाता वापसी के 129वें वर्ष का स्मरणोत्सव मना रहा है।
और अगर हम स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, तो मनोज कहीं ना कहीं हमें उनकी वो स्पीच जो उन्होंने अमेरिका में बोली थी,
हाँ,
शिकागो में, वो याद आ जाती है।
हाँ,
अगर वक्त होता तो हम अपने लिसनर्स को वो जरूर सुनाते। बट लेट्स मूव ऑन नाउ।
अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं
जी।
पहले दिल्ली के मौसम का हाल। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
And Chennai is expected to have fog or mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum will be around 33 degrees.
Mumbai की बात करें तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ट। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 17 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्री।
और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
मैं हैदराबाद के बारे में कुछ ज्यादा ही जल्दी थी बताने के लिए। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 18 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 37 डिग्रीज सेल्सियस।
अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 19 फरवरी है। देश और दुनिया के इतिहास में 19 फरवरी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। नजर डालते हैं
और मैं शुरू करती हूँ क्योंकि आई एम बिगनिंग विद द ईयर 1649। ऑन दिस डे द डच कॉलोनाइजेशन एफर्ट्स वर पुट टू एन एंड बाय द पोर्चुगीज आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ गुरापीज इन ब्राजील। एंड ऑन द सेम डे इन 1878 अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडिसन पेटेंटेड द फोनोग्राफ।
आज ही के दिन 1891 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन दैनिक के रूप में हुआ।
और वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं आज एक इवेंट आपको बताने वाली हूँ मनोज, इन 1913 पेड्रो लस्करिन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको फॉर 45 मिनट्स, द शॉर्टेस्ट टर्म फॉर अ प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री। मूविंग ऑन टू ईयर द 1945 द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड ऑफ योवा जीमा वॉज इन्वेटेड बाय द 30,000 US मरीन्स टू सीज कंट्रोल फ्रॉम द जापानीज इन द फाइनल स्टेज ऑफ वर्ल्ड वॉर द सेकेंड।
आज ही के दिन 1986 में देश में पहली बार कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण टिकट की शुरुआत हुई।
In 1992, 24-year-old recent film school graduate John Singleton became the youngest and first black film director nominated for an Academy Award for his movie Boys and the Hood.
आज ही के दिन 1999 में डेनमार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर लेन वेस्टरगार्ड ने वाशिंगटन में प्रकाश की गति धीमी करने में सफलता पाई। और 2000 में आज ही के दिन तुवालू संयुक्त राष्ट्र का 189वां सदस्य बना। 2004 में आज ही के दिन कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों पर प्रतिबंध लगाने वाली स्टॉकहोम संधि का विश्व के 50 से ज्यादा देशों द्वारा अनुमोदन हुआ।
In 2007 on this day, the popular blogging website Tumblr was founded by David Karp.
2007 में आज ही के दिन भारत बांग्लादेश में आतंकवाद का मुकाबला करने पर सहमति बनी। 2007 में आज ही के दिन गाड़ी नंबर 9001 अब अटारी स्पेशल समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट के बाद लगी आग में 68 यात्री मारे गए। 2008 में संस्कृत कवि स्वामी श्रीराम भद्राचार्य को उनके महाकाव्य श्री भार्व राघवियम के लिए वाचस्पति सम्मान प्रदान किया गया। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन जयंती या पुण्यतिथि है।
जी बिल्कुल। एंड लेट्स बिगिन विद द रिमेम्बरिंग एंड पेइंग ट्रिब्यूट्स टू रोनल बेलफोर्ड बॉन स्कॉट हु वाज एन ऑस्ट्रेलियन सिंगर हु वाज द सेकंड लीड वोकलिस्ट एंड लिरिसिस्ट ऑफ द हार्ड रॉक बैंड ACDC फ्रॉम 1974 अंटिल हिज डेथ इन 1980 एंड इन जुलाई 2004 इश्यू ऑफ क्लासिक रॉक स्कॉट वाज रैंक्ड नंबर 1 इन अ लिस्ट ऑफ 100 greatest frontman of all time. Their album 1979 album Highway to Hell reached the top 20 in the United States and was commercial breakthrough. So let's listen into Highway to Hell live from Countdown 1979. Don't need reasons, don't need rhyme.
आज पुण्यतिथि है गोपाल कृष्ण गोखले की। वे अपने समय के अद्वितीय संसदविद और राष्ट्र सेवी थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक भी थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के 9 वर्ष बाद गोखले का जन्म हुआ था। ये वो समय था जब स्वतंत्रता संग्राम असफल अवश्य हो गया था, किंतु भारत के अधिकांश देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की आग धधकने लगी थी। गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आपके परामर्श पर ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व 1 वर्ष तक देश में घूमकर स्थिति का अध्ययन करने का निश्चय किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए गोखले ने गांधी जी को आर्थिक सहायता भी दी। गोखले सिर्फ गांधी जी के ही नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी को अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की प्रेरणा गोखले से ही मिली थी। गोखले की प्रेरणा से ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। सन 1912 में गांधी के आमंत्रण पर वो खुद भी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां जारी रंग भेद की निंदा की।
Yes, and today we are also paying tributes to Pankaj Kumar Malik, who was an Indian music composer, playback singer and actor, who was a pioneer of film music in Bengali cinema and Hindi cinema at the advent of playback singing, as well as an early exponent of Rabindra Sangeet. He was awarded the Padma Shri in 1970, followed by the Dada Saheb Phalke Award in 1972 for lifetime contribution to Indian cinema. Aur iske upar mujhe pata hai आप थोड़ा कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं।
पंकज मलिक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। संगीत और गायन के अलावा अभिनय में भी इन्हें कुशलता हासिल थी और वो जब भी पर्दे पर अवतरित हुए कामयाब रहे। उनकी ऐसी हिंदी फिल्मों में डॉक्टर आंधी और नर्तकी आदि विशेष रूप से चर्चित है।
मेरे हटेल शाम मैं भी हट पे अड़ा हूँ, भोकर लगात मैं तेरे रस्ते में पड़ा हूँ। मेरे हटेल शाम ओ भागने वा।
एंड मनोज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ पंकज कुमार मलिक के बारे में। ही स्टार्टेड हिज करियर विद द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इन कलकत्ता इन 1927, द फोर रनर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो अलॉन्ग विद कंपोजर आरसी बुराल, वेर ही कंट्रीब्यूटेड एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट फॉर नियरली 50 ईयर्स। And now moving on to birth anniversaries and birthdays. Today is the अच्छा आप बोलिए पहले प्लीज।
पथ में सांझ पहाड़ियां ऊपर, पीछे अके झरने का पुकारना, सीकरों की मेहराब की छांव में छूटे हुए कुछ का ठुनकारना, ये रचना थी नामवर सिंह की। आज पुण्यतिथि है हिंदी के प्रसिद्ध कवि और प्रमुख समकालीन आलोचक नामवर सिंह की। उनका जन्म 1 मई 1927 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि ली। नामवर सिंह बनारस के ईश्वर गंगी मोहल्ले में रहते थे। 1940 ईस्वी में उन्होंने नव युवक साहित्यिक संघ नामक और साहित्यिक संस्था अपने सहयोगी पारसनाथ मिश्र के सेवक के साथ निर्मित की थी।
And I was talking about Nicholas Copernicus, Manoj, who was a Renaissance polymath, active as a mathematician, astronomer, and Catholic canon, who formulated a model of the universe that placed the sun rather than the earth at its center. In all likelihood, Copernicus developed his model independently of Samos, an ancient Greek astronomer who had formulated such a model some 18 centuries earlier.
आज जयंती है कसीन थुनी विश्वनाथ की। उनका जन्म 19 फरवरी 1930 गुड़ीवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता और निर्माता निर्देशक हैं। उन्हें साल 2016 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। के विश्वनाथ की कुछ प्रमुख फिल्मों में सरगम, कामचोर, संजोग, जाग उठा इंसान और ईश्वर शामिल है।
तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना सजना।
और अब समय है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
बट स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। नमस्कार।